यशाया अध्याय 37, अध्याय 37 पद 1। जब हिजकिया राजा ने ये सुना तब वो अपने वस्त्र फाड़, हां ये तो वास्तव में बुरा संदेश है, कपड़े फाड़ कर। पद 1 में आगे लिखा है और टाट ओढ़ कर। टाट ओढ़ने का अर्थ ये भी था कि स्वयं को कष्ट देना। ये विलाप का प्रतीक भी था। आप कल्पना कर सकते हैं कि टाट ओढ़ने से चमड़ी दुखती होगी। राजा ने स्वयं टाट ओढ़ा। यशाया अध्याय 37 पद 1 के अंत में लिखा है और यहोवा के भवन में गया या मंदिर में गया और उन्होंने उससे कहा आओ हम देखें। यशाया अध्याय 37 पद 2 और 3। और उसने एलियाकिम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र यशया नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को जनने का बल न रहा। सत्य तो यह है कि वे अशुरों की सेना द्वारा घेरे जाने के नुकसान से पीड़ित और खाने की कमी के कारण गर्भवती माताओं में बच्चे जनने की शक्ति नहीं थी। उन्हें प्रसव पीड़ा तो होती थी परंतु उनमें बच्चे के जन्म देने की शक्ति न थी। उसने कहा यशया अध्याय 37 पद 4, संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रापशके की बातें सुनी जिससे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें दबटे, सो तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। ये वास्तव में उनका यशया से निवेदन था कि वो यहां हमें घेरे हुए हैं और हम बहुत परेशान हैं, अतः हमारे लिए प्रार्थना कर। यशाया अध्याय 37 पद 5 से लेकर 7 तक। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशया के पास आए तब यशया ने उनसे कहा अपने स्वामी से कहो यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है उनके कारण मत डर। सुन मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा जिससे वो कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। सेनहरीब की धमकियों की प्रतिक्रिया में यहोवा ने कहा कि वो अपने देश लौट जाएगा और तलवार से घात किया जाएगा। यशाया अध्याय 37 पद 8 से लेकर 14 तक। तब रापशके ने लौटकर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया क्योंकि उसने सुना था कि वो लाकिश के पास से उठ गया है। उसने कूश के राजा तिरहका के विषय ये सुना कि वो उसे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को ये कहकर भेजा कि तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है ये कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख तूने सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उन्हें सत्यानाश ही कर दिया, फिर तू क्यों बच जाएगा? गोजान और हारान और रेसेप में रहने वाली जिन जातियों को और तलससार में रहने वाले एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? हमात का राजा, अरपाद का राजा, सेपरवेम का राजा और हेना और इवा के राजा, ये सब कहा गए। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। मुझे ये बात बड़ी लगी। हिजकिय्याह के पास धमकी भरा और बेचैन करने वाला पत्र आया था, परंतु हिजकिय्याह ने क्या किया? वो परमेश्वर के भवन में गया और पत्र परमेश्वर के सामने फैलाकर कहा, देख प्रभु, वे तेरे लिए क्या कहते हैं, अब तू ही बदला ले। यदि हम भी अपनी समस्याएं और परेशानियां परमेश्वर के सामने लाना सीखें, परमेश्वर के सामने फैलाकर रख दे, प्रभु देख क्या हो रहा है, ये कैसा बुद्धिमानी का काम होगा। अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रख दो। यशाया अध्याय 37 पद 15 और 16। और यहोवा से ये प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इसराइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। यहोवा सबसे बड़ा है, अनेक देवी देवता है, क्योंकि एक देवता मनुष्य की भावनाओं की चरम सीमा होता है। बाइबल के कथन के अनुसार अन्य जातियों के देवी देवता व्यर्थ है, केवल यहोवा ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। फ्रांसिस शेफर ने कहा था कि समय आ गया है जब हम मसीही विश्वास परमेश्वर के बारे में बातें नहीं कर सकते, क्योंकि भिन्न भिन्न लोगों के लिए परमेश्वर भिन्न भिन्न है। इसलिए उनसे कहा कि अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर शब्द के प्रयोग की अपेक्षा उसके गुणों की चर्चा करें, क्योंकि किसी के लिए परमेश्वर प्रेम का सारांश हो सकता है, अतः उसके गुणों को दर्शाना आवश्यक है, जैसे अनंत एवं जीवित परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इस प्रकार हम जानते हैं कि हम किस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला एक जीवित और अनादि परमेश्वर है। मनुष्य तो अनेक देवी देवताओं के सामने झुकता है और उनकी उपासना करता है, परंतु सत्य तो यह है कि एक ही सच्चा और जीवित अनंत काल का परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। अतः यहाँ पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों और समस्त राष्ट्रों के देवताओं में यहोवा एक तू ही है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यशाया अध्याय 37 पद 17। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, यहोवा आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। यहां देखिए, हिजकिय्याह उसे जीवित परमेश्वर बता रहा है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। सेनाओं का परमेश्वर, इसराइल का परमेश्वर, जो करूबों के बीच बैठता है, वो इस धमकी के पत्र में विहित सत्य को मानता है। यशाया अध्याय 37 पद 18। हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है, आसपास के राज्य को उजाड़ा था। यशाया अध्याय 37 पद 19 और 20। और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काट और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनको नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। अति अनोखी प्रार्थना, परमेश्वर की महानता को स्वीकार करने की प्रार्थना। अपनी प्रार्थना में वो उन तथ्यों को उभारता है जिन्हें वो जानता है, इसके बाद ही परमेश्वर से सहायता की याचना करता है। यशाया अध्याय 37 पद 21 और 22। तब आमोस के पुत्र यशया ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने जो अशूर के राजा सेनहरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने ये वचन कहा है, सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है। वो सेनहरीब के लिए कहता है कि हमारी छोटी छोटी लड़कियां भी तुझे तुच्छ जानती है। यशाया अध्याय 37 पद 22 में आगे लिखा है, और ठट्ठों में उड़ाती यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। सिर हिलाना एक तरह से निंदा का चिन्ह है। यशाया अध्याय 37 पद 23 से लेकर 30 तक, तूने किसकी नाम धराई और निंदा की है, और तू जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है वो किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध, अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लेबनोन के बीच तक चढ़ आया हूं। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा, और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में और उसके वन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने खुदवाकर पानी पिया और मिस्र के नहरों में पाव धरते ही उन्हें सुखा दिया। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी? इसलिए अब मैंने ये पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठना, कूच करना और लौट आना जानता हूं, और ये भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भटकाता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भटकाता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा, और तेरे लिए ये चिन्ह होगा। ये हिजकिय्याह की संतान के लिए भविष्यवाणी है। यशाया अध्याय 37 पद 30। इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें पुनः ले आऊंगा और जिस मार्ग से तुम आए हो उसी मार्ग से जाओगे। ये सेनहरीब के लिए संदेश का अंत है। वो हिजकिय्याह से कहता है कि ये चिन्ह होगा कि परमेश्वर अपने वचन को निभाता है। यशाया अध्याय 37 पद 30। इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। परमेश्वर उनका पुनरुद्धार करेगा और पूरी तरह से दुश्मन को यहूदा से बाहर निकाल देगा। यशाया अध्याय 37 पद 31 से लेकर 35 तक। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूलेंगे फलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सियोन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण ये काम करेगा। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश करने व इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वो ढाल लेकर इसके सामने आने वो इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया है उसी से वो लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। परमेश्वर ने राजा हिजकिया को यशया के द्वारा ये वचन दिया था। इस समय यदि आप राजा होते और कोई परमेश्वर का भविष्यत वक्ता आपको ये संदेश देता तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? यहां विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना सामने खड़ी है, ये तो आप स्वयं भी जानते हैं कि आप निर्बल हैं। अशूर का राजा कह रहा है कि हम तुम्हें 2000 घोड़े देते हैं परंतु तुम्हारे पास घुड़सवार ही नहीं है। उन्होंने सब राष्ट्रों को हरा दिया है जिनमें उनसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र भी थे। परंतु परमेश्वर का वचन यशया के पास आया, चिंता मत कर, वे नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वे एक तीर भी नगर पर चला नहीं पाएंगे, वे जिस मार्ग से आए उसी से लौट जाएंगे। आप कर भी क्या सकते हैं? आप तो वास्तव में असुरक्षित हैं। आपको ये मानकर भविष्यत वक्ता की बात को स्वीकार करना होगा कि यही सच है, क्योंकि इसकी अपेक्षा आप कर भी क्या सकते हैं। परंतु हम पढ़ते हैं कि भविष्यत वक्ता को जो वचन परमेश्वर ने दिया था वो पूरा हुआ, अर्थात भविष्यत वक्ता ने सच कहा था। यशाया अध्याय 37 पद 36 और 37। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 185,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि लोथ ही पड़ी है। तब अशूर का राजा सैनहरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। निनवे अशूर देश की राजधानी थी। वो हार कर अपने देश लौटा। परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसे हरा दिया था। यशाया अध्याय 37 पद 38। वहां वह अपने, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने यशया से कहा था कि अशूर का राजा वापस लौट जाएगा और तलवार से मारा जाएगा। यशाया अध्याय 37 पद 38। वहां वो अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अदर्मलेक और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए, और उसका पुत्र एसर-हद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस प्रकार परमेश्वर का वचन पूरा हुआ।